તારીખ 8/2/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પતંગ 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 607
128 નિર્વાણ પદ નું ધ્યેય ક્યારે બંધાય, કેવા ભાવ હોય તો બંધાય, કેમ કે નિર્વાણ પદ નું ધ્યેય બંધાવવું તે નિર્વાણ પદ નો પાયો છે. તો એ નિર્વાણ પદ નો પાયો કેટલો મજબૂત હોય છે એ કૃપાળુ દેવના આ ભાવો ઉપરથી, આ વચનો જે ભાવ વ્યક્ત કરે છે એ વચનો ઉપરથી એ ભાવ સમજવા રહ્યા અને પોતાના પરિણામને ટેલી કરવા રહ્યા કે મારા પરિણામ એવા છે તો મને મોક્ષનું ધ્યેય છે, નિર્વાણ પદ એટલે મોક્ષ, તો મને મોક્ષનું ધ્યેય છે અને તો મને મુમુક્ષુતાની શરૂઆત છે. અહીંથી મુમુક્ષુતાની શરૂઆત નાની હોય ગણી છે. શું કહે છે ફરીથી હિન્દીમાં લઈએ, એ કોઈ બી મુમુક્ષુ હો નિર્વાણ પદ કા ધ્યેય હોતા હૈ નિર્વાણ પદ કી નીવ હૈ. નિર્વાણ પદ કોઈ મામૂલી ચીજ તો નહીં હૈ, સિદ્ધ પદ હૈ, મોક્ષ પદ હૈ, તીન લોક કા નાથ બન જાયેગા. તો એસી બડી ઉપલબ્ધિ સિદ્ધ પદ કી ઇતની બડી ઉપલબ્ધિ કિસ નીવ સે ડલતી હૈ? ડલતી હૈ તો એસી બડી ઉપલબ્ધિ હોતી હૈ જૈસે બડા બિલ્ડિંગ કા આધાર કહાં હૈ? નીવ મે હૈ. લોગ બિલ્ડિંગ કો દેખતા હૈ, નીવ દિખાઈ નહીં દેતી, કેકો તો જમીન મે હોતી હૈ. ઇતના બડા હૈ, કિતના બડા હૈ, લેકિન ઇસકી નીવ કિતની મજબૂત હૈ વો ઇસકે જો જાણકાર લોગ હૈ, તજજ્ઞ લોગ હૈ, એક્સપર્ટ હૈ, વો હી જાનતે હૈ. એસે નિર્વાણ પદ કી નીવ કૈસી હોતી હૈ મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં? યે કૃપાલુ દેવ કે ઇન શબ્દો સે સમજ મેં આ સકતી હૈ. ક્યા લિખતે હૈ ન સમજાય તો પૂછજે તો મને. નીવ એટલે પાયો, ચાહે જૈસા હો, ચાહે જીતના દુઃખ સહન કરના પડે, ચાહે જીતના પરિસહ સહન કરના પડે. પરિશ્રમ મેને કુદરતી આપત્તિ, ચાહે જીતના ઉપસર્ગ સહન કરના પડે. ઉપસર્ગ મેને કિસી કે ઓર સે પ્રતિકૂળતા ઓર આપત્તિ ખડી કી જાય, કોઈ દૂસરે મનુષ્ય છે, કોઈ તિર્યંશ છે, કોઈ દેવ છે, દેવ મેને ભૂત પ્રેત વગેરે, ઓર તો કોઈ દેવ કરતા નહીં. ચાહે જીતની વ્યાધિ સહન કરની પડે, વ્યાધિ મેને શરીર કે રોગ કિતને ભી હો જાય. અબ તો થોડા શરીર મેં ગડબડ હોતા હૈ તો જીવ કો પરિણામ મેં ગડબડ હો જાય. કિતની મજબૂત નીવ હોતી હૈ. ચાહે જીતની વ્યાધિ સહન કરની પડે, चाहे जितनी उपाधि सहन करनी पड़े। उपाधि मैंने क्या कि कोई न कोई प्रतिकूलता आ जाए तो उसका टेंशन आता है, उसको कहते हैं उपाधि। और टेंशन का दुख बहुत बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तनाव होता है। टेंशन माने तनाव। तो टेंशन होता है तो लोग आत्मघात करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु का दुख से भी टेंशन का दुख बड़ा है। तो मनुष्य मृत्यु पसंद करता है, टेंशन पसंद नहीं करता है। वो कुछ भी आ जाए, चाहे जितनी आधी आ पड़ो। आधी मैंने ये भी एक उपाधि की एक डिग्री है, आधी व्याधि उपाधि। आधी मैंने तकलीफ, व्याधि मैंने शरीर के रोग, और उपाधि मैंने टेंशन। चाहे जितने हुए, चाहे तो जीवन काल मैंने आयु एक समय मात्र हो, मैंने मृत्यु दिखे सामने, ऐसी परिस्थिति आ जाए और दूर निमित्त हो, मैंने कोई निमित्त की अनुकूलता नहीं हो, सब प्रतिकूल निमित्त हो, परंतु ऐसा करना ही है, ऐसा मैंने जन्म मरण मिटे और आत्म कल्याण होवे ऐसा करना ही है। ऐसे भाव मुमुक्षु को आता है, तब उसको मोक्ष पद की नींव डलती है। और ऐसे मजबूत भाव, ऐसे जोरदार भाव, बलवान भाव आता है, तब ही मोक्ष पाने का अभिप्राय बन जाता है, जो अभिप्राय कभी अनंत काल में जीव को नहीं हुआ। तो परिणमन में अभिप्राय की भूमिका बहुत बड़ी है। जो भी किसी भी जीव के परिणाम चलते हैं ना, उसमें इसका अभिप्राय ही मुख्य रूप से काम करता है, उसका रोल बहुत बड़ा है। जैसे हम आपको पूछेंगे कि आप यहाँ सुनने को आते हो, सत्संग में आते हो, तो किस अभिप्राय लेकर के सुनते हो, इस पर आपका सुनने का सफल और निष्फल होने का आधार है। आई समझ में? तो योग्य लगे तो बता देना, हम इस अभिप्राय से बैठते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, इस पर आधार है सब। जैसे कोई किसी को खुशी करने के लिए बैठता है कि चलो भाई इसको नाराज नहीं करना है, तो इससे सत्संग सफल नहीं हो गया। ऐसे किसी भी कार्य की सफलता का आधार इसके पीछे अभिप्राय क्या है उस पर और निर्भर करता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे कोई जीव मोक्ष जाता है, या गए जितने भी और जाएंगे जितने भी, वो ऐसे मजबूत अभिप्राय को लेकर के जाएंगे कि दुनिया में उथल पाथल हो जाए, मेरे को तो मोक्ष में जाना ही है, अब संसार का परिभ्रमण नहीं करना है किसी कीमत पे, इसके लिए मेरी पूरी तैयारी है, कोई भी कीमत करने के लिए। नहीं, वो तो मतलब क्या है कि मृत्यु दिखे तो भी मृत्यु का विकल्प नहीं करना है मेरे को, जन्म मरण से मुक्त होने के का अभिप्राय करना है, यही भाव करना है। मृत्यु का डर लगता है ना, और मृत्यु नहीं हो तो अच्छा, इसका कोई इलाज करे। हमको इलाज करना है जन्म मरण का नाश होने का, एक समय नहीं, वो तो एक समय मैंने कम से कम समय रहा हो, एक समय तो पकड़ने में नहीं आता छदमस्त, लेकिन जब बात करते हैं तो कम से कम समय मिले वो बात ले लेना वहाँ, बाकी एक समय तो छदमस्त केवल ज्ञानी के सिवा कोई नहीं पकड़ सकता, छदमस्त नहीं पकड़ सकता। ई वक्ते પણ મૃત્યુ વખતે પણ જન્મ મરણ એમ કે ક્યાં હે કે બાત તો એ ચલી કે પહેલે જન્મ મરણ કી ચિંતના હો, અબ ચિંતના આતી નહીં હે, टाइम जाता है, समय निकलता है, अब समय बहुत कम रह गया, मृत्यु दिख रहा है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी आ गई, कोई ऐसे ही बन गया कि मृत्यु अभी निश्चित है अल्पकाल में, तो जो भी घटना घटी हो उसको सलटाने के लिए जीव प्रयत्न करता है। ये जीव है जन्म मरण का नाश करने का निश्चय करता है, निर्धार करता है, ऐसी बात है। तो वो निर्धार के पहले उन्होंने चार पैराग्राफ क्यों लिखा कि वेदना वाला कोई ये अभिप्राय आएगा, बिना वेदना है वो अभिप्राय आएगा नहीं, मुमुक्षुता शुरू होगी नहीं, क्योंकि ये अभिप्राय तो शुद्ध अंतकरण वालों को ही आता है, और अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण न के इसका पेट मलिन है, पेट साफ करो, ऐसे अंतकरण शुद्ध होता है वो वेदना वाले को ही होता है, दूसरे को नहीं होता है, दूसरे का मलिन अंतरंग मलिन रहता है तो वो इस निर्धार पर आ नहीं सकता। जब ये निर्धार पर नहीं आ सकता तो मुमुक्षुता की तो शुरुआत ही नहीं हुई, तो मुमुक्षुता के ऊपर का स्टेज आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, ये बात है। इसलिए गुरुदेव ने भी यही सिद्धांत दिया कि पूर्णता के लक्ष्य से, पूर्णता मैंने निर्माण पद मोक्ष पद, उसका लक्ष्य उसका ध्येय होने से ही मुमुक्षुता की वास्तविक शुरुआत होती है। इसके पहले शास्त्र पढ़ करके, व्रत नियम पालन करके, भक्ति पूजा कर करके, यात्रा करके, तपस्या करके हम मुमुक्षु हैं ऐसा मान लिया, वो कल्पना है, मुमुक्षुता नहीं है, सब कल्पना ही कल्पना है। अरे हम तो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं, सूक्ष्म में सूक्ष्म विषय है, और वो भी हमको बराबर समझ में आ गई है अभी, ऐसे मुमुक्षुता नहीं आती। मुमुक्षुता तो पूर्णता के लक्ष्य से आती है, पूर्णता का लक्ष्य ऐसे परिणाम से बंधता है जो ये चाहे जैसा हो, चाहे जितना दुख आ पड़ो, चाहे जितनी आदि व्याधि उपाधि उपसर्ग परिसर कुछ भी हो जाए, हमको इसके लिए प्रयत्न करना है। ऐसी दृढ़ता ये बिना इसका उसको निर्धार नहीं किया जाता, लक्ष्य नहीं बोला जाता। और जिसको ऐसा परिणाम होता है उनको ऐसा लगता है कि हे जीव, वो अपने आप को संबोधन करता है कि वहां तक हो, हे जीव तेरा छुटकारा होने वाला नहीं है, परिभ्रमण करता रहेगा, छुटकारा होगा नहीं। ऐसा परिणाम होने पर उसकी आत्मा अंदर से जवाब देती है कि अब बात है वो बराबर है, अब जो बात है वो बराबर है। मैंने यथा योग्य लगता है, यही यथा योग्य लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको लक्ष्य हुआ उसके आत्मा ने भी गवाह दी, साक्षी हुआ अंदर से कि अब तेरा निर्धार है, वो यथा योग्य लगता है। और फिर जो संवेग आता है आत्मकल्याण के लिए, जो परिणाम आते हैं बहुत जोर से उठते हैं और बाद ही सही अवलोकन चलता है, बाद ही प्रयोजन की दृष्टि तीक्ष्ण और सूक्ष्म होती है, इसके पहले किसी को होते नहीं है। फिर ऊपर की बातें तो और पीछे की रहेगी, वेद विज्ञान आदि। तो ऐसे हुए बिना कोई मान लेते हैं कि हम अवलोकन करते हैं, हम वेद ज्ञान करते हैं, हमको हम ध्यान करते हैं, हमको अनुभव हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, ये सब हवा में चलने की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। ये बात कही श्रीमद् जी ने, मोक्ष का निर्धार करने वाले जीवों का परिणाम की और इसी परिणाम से सारा अभिप्राय संसार का टूट जाता है, मिट जाता है परिभ्रमण का, और एक मोक्ष की उपासना का अभिप्राय बन जाता है। ये नींव है मोक्ष की। इतना कह करके अब कहते हैं कि मेरी भावना ऐसी है कि एक क्षण क्षण में पलटने वाली प्रकृति स्वभाव की वृत्ति मुझे नहीं चाहिए। कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, एक ही चीज सुहाती है वही चीज अच्छी नहीं लगती। फिर जो चीज अच्छी लगे और कुछ ही समय में वो अच्छी नहीं लगे, उसमें अक्लमंदी क्या है बताओ, क्या बुद्धिमानी है? कोई चीज अच्छी लगी तो बुद्धि तो लगी इसके पीछे, पर कुछ टाइम पीछे आप कहते हैं कि वो अच्छी नहीं है। आज राग करते हो, बात बात में द्वेष करने लग जाते हो। जिस व्यक्ति से तुम राग करते हो, बात बात में से मिनटों में द्वेष करने लग जाते हो। ऐसे परिणाम हमको नहीं चाहिए। क्या चाहते हो कि ऐसे परिणाम हमारे हो रहे हैं, इसके बदल तो हमारे परिणाम शून्य हो जाए, वो अच्छा है। इस सभी प्रकार के राग द्वेष के विकल्प मिल करके एक दफे शांत 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 भाव हो जाए, व्याकुलता सब मिट जाए, इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहता, तो वो तो निर्विकल्प दशा में ही शांति आती है। सम्यक दर्शन और स्वानुभव में ऐसी शांति आती है, शून्य मैंने निर्विकल्पता, मुझे तो निर्विकल्पता चाहिए। आत्म प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो कुछ एक काल पर्यंत संत मैंने सदगुरु चाहिए, सत्पुरुष चाहिए, ज्ञानी पुरुष चाहिए कि जिसके संग में कुछ शांति मिल सकती है। अगर वो भी उपलब्ध नहीं हो तो कुछ एक काल पर्यंत सत्संग चाहिए। बहुत टेंशन में आता है उनको भी सत्संग से टेंशन मिटता है। तो ये संकल्प विकल्प की आकुलता जो चल रही थी उसके सामने तो निर्विकलता चाहिए। अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं है तो कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो ठीक है, समाधान हो जाए। अगर वो नहीं है तो फिर सत्संग चाहिए। किसका? जिसको केवल आत्मकल्याण करना है उसका। दूसरे का सत्संग वो सत्संग नहीं है, असत्संग है या कुसंग है, दो में से एक है। इसलिए सत्संग करना तो केवल आत्मकल्याण का निर्धार किया हो उसका ही करना है। कहीं भी तत्व चर्चा होती है इसलिए बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सत्संग यथार्थ सत्संग नहीं है, फिर कोई और रास्ते चढ़ जाओगे। इसलिए यथार्थ सत्संग होवे वहीं सत्संग करना। अगर सत्संग भी ऐसे मुमुक्षु भी नहीं मिले तो जो आर्य पुरुषों ने किया हो ऐसा सदाचरण मुझे चाहिए। सदाचरण से जीवन जीना है, नीति वगैरह। मैंने व्यवसाय आदि बहुत तीव्र पाप के नहीं हो, क्योंकि जीवन में सदाचरण है वही पवित्रता का मूल है। उन्होंने पुष्पमाला में लिखा है कृपा गुरुदेव, सदाचार पवित्रता नो मूल है। क्या कि सरलता से रहना, सरलता से जीना, क्या नीतिमय जीवन जीना, तीव्र पाप के परिणाम नहीं करना, ऐसे ऐसे सज्जन, अच्छे सज्जन रहते हैं, ऐसा ऐसा मेरा जीवन हो। सत्संग न हो तो कम से कम उतना तो मुझे होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मुमुक्षुता आ जाती है तो बहुत फर्क पड़ता है। वो तो शीघ्र आत्मकल्याण के पीछे लग जाता है। इसका ऐसा संवेग उठता है, क्या इसका ऐसा संवेग उठता है कि शीघ्रता से आत्मकल्याण करना है, वही उसको। क्योंकि उसको तो मोक्ष का ध्येय हुआ ना, तो उनको डिफरेंस दिखता है कि मैं तो बहुत नीचे खड़ा हूँ और बहुत ऊपर मुझे जाना है। धीरे धीरे चलना ऐसे काम नहीं हो सकता, ऐसे काम होगा नहीं, तो उसको छटपटाहट आती है। मैंने लगनी लगती है उसको, उसको लगनी लगती है, और वही सही भावना है। जिसको लगनी लगती है वही सही भावना है, तो उनको तो तीव्र पाप के परिणाम आएंगे नहीं।
अभी तो बात तो मुक्ता तो नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा पाप का वो है तो मुक्ता आ सकती है,
कहाँ से आएगी? क्योंकि उसके पहले तो पाप का पश्चाताप रूप वेदना आएगी, और वेदना आने से फिर उदासीनता आ जाएगी, तो उदासीनता में पाप के तीव्र पाप के परिणाम कहाँ से होंगे? चिंतना वेदना आने से तो उदासीनता आ जाएगी, कहाँ से होगी बताओ? वो तो तीव्र रस के परिणाम टूटने के लिए तो योजना है सारी, सारी जो योजना है वो तो रस तोड़ने के लिए तो है, दर्शन मोह तोड़ने के लिए है। और वो भी नहीं है तो जिन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीनता के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो अकेली जिन भक्ति नहीं लिया कि चलो भगवान के मंदिर जी में जाकर के पूजा करें या भक्ति करें या कोई भजन करें तो भक्ति हो गई, ऐसा नहीं। जिन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीनता कि मुझे ऐसा ही होना है, जिनेंद्र परमात्मा को देख करके मंदिर जी में मुझे ऐसा होना है जैसा, यही मेरा ध्येय है, आप जैसे मोक्ष पद में विराजमान हो वैसा ही मुझे होना है, ऐसा शुद्ध अंतकरण से शुद्ध भाव से लीनता, वही बहुमान है, वही सच्ची भक्ति है। भजन बोल दिया वो भक्ति है, उतनी ही बात नहीं है। और वास्तव में भजन वही बोलता है जिनको ऐसा बहुमान होता है, वही रूटीन से भजन बोलना वो कोई भजन भक्ति नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुमान आता है अति शुद्ध भाव से। अति शुद्ध भाव से मैंने मुझे भी ऐसा ही होना है, आपका जैसा ही होना है, इस तरह से, तब वास्तविक बहुमान आता है, तभी भक्ति बोली जाती है, कही जाती है, चाहे भजन बोले चाहे भजन नहीं बोले, नहीं बोले तो भी उसकी भक्ति सही है, और बोले तो भी ऐसा नहीं होने पर ये भक्ति सही नहीं है। हिंसा का धंधा है
करते हुए,
हैं? वो तो छोड़ देना चाहिए। क्यों, किसके लिए करना है?
ऐसा पढ़ा जब ज्यादा कमा लेंगे तो जल्दी विपत्ति हो
जाएगा, ज्यादा गंदे हो जाएंगे फिर पवित्र जल्दी हो जाएंगे, ये कोई तरीका बताएगा? निवृत्ति से कोई काम होता है ऐसा नहीं है, आत्मार्थी का ऐसा निर्धार होता है कि चाहे उदय में निवृत्ति हो या प्रवृत्ति हो, ये तो प्रारब्ध अधीन है, मेरे पुरुषार्थ अधीन नहीं है, मेरे तो हर हालत में मेरा काम चालू रखना है, ऐसा निर्धार होता है। निवृत्ति नहीं भी मिले तो क्या काम नहीं करना, क्या आत्मकार्य नहीं करना क्या? और जिन्होंने निवृत्ति ले ली उसका काम हो गया क्या?
उदय अधीन हो गया तो कोई काम, तो फिर काम होना उदय अधीन हो गया,
तो वो बात है नहीं, वो गलत ख्याल है।
उसमें रस काम करना है, बस इतना चाहिए, वो अपना रस ही और कुछ नहीं है, देना चाहिए, यानी अपना एकांत रस है और कुछ नहीं है, देना चाहिए, तो
बाना है और कुछ नहीं है। जो काम करता है वो अभी से ही चालू करता है, वो कल की बात रखता है, उसको काम करना नहीं है, क्योंकि ये काम में तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और बहुत बड़ा लाभ वाला काम कोई उसके लिए कोई नहीं। पीछे करना ऐसी कोई बात हो सकती है संसार में भी?
नहीं, नहीं।
है होती है क्या?
वो पहले
वो पहले
अभी और अब तक
अब भी पक्का करो क्या, चाहे ग्राहक के साथ व्यापार करके पैसा मिलना हो, चाहे लड़की का संबंध करना हो, चाहे अब भी पक्का करो, अब भी पक्का करो, ये बात आएगी। बोले कि नहीं बाद में आपको जवाब देंगे, नहीं 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 ये बात बनने वाली नहीं है। और यहाँ तो अभी नहीं करना है, पीछे करना है, उसकी नियत ही खोरी को क्या बोलता है, खोटी है, इसकी नियत ही खोटी है, इसकी नियत सच्ची है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लाभ को कौन पीछे करेगा, कोई नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। और ऐसी भक्ति नहीं हो तो फिर कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं है। तो यहां से लेवे तो कि अगर भगवान की प्रति शुद्ध भाव से जिन भक्ति में लीनता होती है वही सदाचरण में आता है, सदाचरण में आता है वही सत्संग ठीक करता है, जो सत्संग ठीक करता है वही ज्ञानी पुरुष को पाता है, और जो ज्ञानी पुरुष को पाता है वही निर्विकल्प दशा को पाता है, और इसका संकल्प विकल्प की सभी प्रकार की आकुलता मिट जाती है। ऐसे लो तो वो क्रम ऐसे है, ये उतरता क्रम है, ये चढ़ता क्रम है। अब कुछ सिद्धांत लिखे हैं, इसके सूत्र जैसे वाक्य लिखे हैं। गम पड़िया विना आगम अनर्थ कारक थी पड़े छे। गम मैंने क्या कि शास्त्र पढ़ने की सही दृष्टि उसको यहाँ कहते हैं गम। जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस करने की सही कार्य पद्धति आनी चाहिए, वरना वो बिजनेस नहीं करेगा, फेल जाएगा, बिजनेस में फेल जाएगा। क्यों, अगला समझ जाएगा कि उसको बिजनेस करने का आता ही नहीं है, गड़बड़ हो ही जाएगी उसे। ऐसे शास्त्र है वो अपने आप कभी पढ़ना नहीं कि चलो हमको अभी ये शास्त्र पढ़ना है, बहुत अच्छा ऊंचा शास्त्र है हम तो इसको पढ़ेंगे, नहीं चले ऐसा नहीं चले। गुरु गम चाहिए, इस गम में आगे बात क्या है, गुरु गम चाहिए। तो गुरु ये दृष्टिकोण देता है कि शास्त्र कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसे दृष्टिकोण गुरु से मिले बिना कोई शास्त्र पढ़ता है तो उसको नुकसान होता है और होता ही है, या उसका शास्त्र ज्ञान उसको काम में नहीं आएगा। जब भी वो तकलीफ में आएगा, प्रतिकूलता में आएगा, टेंशन में आएगा, या कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगी तो उसका शास्त्र ज्ञान उसको काम में नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो पढ़ा हो तो फालतू का ही पढ़ा है, बिना समझ ही पढ़ा है। और ये गुरुगम किसको मिलती है कि जिसको पात्रता होती है उसको ही, किसको मिलती है, पात्रता वाले को मिलती है। बिना पात्र गुरु का दृष्टिकोण शास्त्र पढ़ने का समझ में नहीं आता। आज्ञाकारिता वाला को, पात्रता वाला को, या जिसको दर्शन मोह की मंदता हुई हो उसको पात्रता कह सकते हैं। आगम मैंने शास्त्र, कोई भी शास्त्र, आचार्य के कुछ शास्त्र होते हैं तो भाग उसको आगम कहते हैं, फिर ज्ञानियों के भी ग्रंथ होते हैं तो उसको आगम कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे पूछते हैं हम कौन कौन सा शास्त्र पढ़े,
पूछना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब कि शास्त्र तो हमको पढ़ना ही है, वो डिसीजन तो हमने ले लिया, अब कौन सा शास्त्र पढ़ना वो डिसीजन आप दो, आधा डिसीजन हमारा आधा आपका। ये कोई काम करने का तरीका है क्या है? कोई काम ऐसा होता है क्या? कोई बड़ा काम होता है तो जो समझदार लोग हैं वो सबसे पहले क्या पूछते हैं मालूम है? इस काम का डिसीजन कौन लेगा ये बताओ पहले, क्या इस काम का डिसीजन कौन लेगा? तो फिर पूछे भैया आधा तो ये लेगा आधा तो वो लेगा, कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, जो इस विषय में एक्सपर्ट है वही डिसीजन लेवे, दूसरे को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है। होता है कि नहीं होता है? ये तो सबसे बड़ा काम है विश्व में, इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है कि अनंत जन्म मरण को मिटा दें, ऐसी रिद्धि सिद्धि लब्धि प्राप्त हो जाए कि जिसमें जगत की कोई रिद्धि सिद्धि लब्धि बाकी नहीं रही है, ऐसी बात है। तीर्थंकर देव को मोक्ष पद में गए ना, उसको विश्व की सभी रिद्धि सिद्धि लब्धि होती है और वो सामने भी नहीं देखेंगे, इसमें क्या है? इतनी बड़ी उपलब्धि है मोक्ष पद की। मोक्ष पद लेने वाले के लिए तो कोई मामूली बात तो है ही नहीं, तो उसका कोई दृष्टिकोण कार्य पद्धति का दृष्टिकोण पाए बिना शास्त्र पढ़ना अनर्थकारक मैंने नुकसान का कारण बनेगा, क्या नियम से नुकसान का कारण बनेगा। सबसे जल्दी तो शास्त्रीय अभिनिवेश हो जाएगा। शास्त्रीय अभिनिवेश माने क्या? कि मैंने शास्त्र पढ़ा और मैं समझा, मैं समझता हूं, अभी मैं समझता हूं, ये अभिमान, मैंने शास्त्र पढ़ा है, फलाने फलाने शास्त्र पढ़े हैं, यानी बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, मैं भी जानता हूं, इसको कहते हैं शास्त्रीय अभिनिवेश या अभिमान, शास्त्र ज्ञान का अभिमान और शास्त्रीय अभिनिवेश है। ज्ञानी का हो जाएगा और उनको अहम भाव ज्यादा रहेगा, ज्ञान जो ज्ञान से विरुद्ध है, अहम भाव है वो ज्ञान से विरुद्ध है, वो बात उसको हो ही जाएगी। ज्ञान से विरुद्ध कृपाणु देवे तो एम कीधु भक्ति विना ज्ञान शून्य छे, तो अहम भाव सहित नु ज्ञान तो माइनस ज्ञान छे, ओलू तो जीरो ज्ञान छे, भक्ति विना नु ज्ञान शून्य छे एटले जीरो छे, तो शास्त्रीय अभिनिवेश सहित नु ज्ञान शु छे? माइनस ज्ञान छे, जीरो ज्ञान नथी, विपरीत ज्ञान छे। केम के ई अहम भाव छे ई तो गुण उत्पन्न थवो जोईए, शास्त्र पढ़ने से कोई गुण आना चाहिए, अवगुण की प्राप्ति हो गई, अभिमान तो अवगुण है, तो गुण के बजाय अवगुण हो गया है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, स्वच्छंद हो जाएगा, हो ही जाएगा। और स्वच्छंद जीतना कोई बड़ा दोष नहीं है, सभी दोष का जन्मदाता मैंने बाप ये स्वच्छंद है। इतना बड़ा दोष है वो, क्योंकि वो ज्ञानी की भूल निकालेगा। हमको एक विद्वान बम्बई में मिले थे, ईश्वर भाई ने बोला हमारा आत्मसिद्धि में उपद से प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, जिन उपकार एट शास्त्र परोक्ष थी गया ना, एवं लक्ष्य थे विना उगे ना, आ खोटू है कि श्रीमद ने भूल है। अमे करणानु योगना जानकार ये लोग शू समझे अमने, ज्ञानी थी गया एटले अमने शू समझे, एटलो बधो अहंकार एटलो बधो अहंकार वात मूकी दियो आया वगे रिए नहीं, एक चर्चा करवा आवे तमारे पास। गुजरी गया था अत्यारे नथी मलाड मारता था गम पड़िया बिना मैंने दृष्टिकोण पाए बिना आगम शास्त्र ज्ञान नुकसान का कारण होता है, और सत्संग बिना ध्यान वो तरंग रूप हो जाता है। क्या मैच्योर पोजीशन आनी चाहिए सत्संग से, चारों पड़खों से समाधान आए बिना, उपयोग आत्मा में स्थिर होगा कहां से, असमाधान तो खड़े हैं कई प्रकार के, अनेक प्रकार का विपरीत अभिप्राय और विपरीत समझ तो खड़ी है, तो उपयोग कहां से आत्मा में लीन होगा, और आत्मा में उपयोग का लीन होना वही तो धर्म ध्यान है, होगा कहां से, तो उसको तो कई प्रकार के विकल्प आएंगे, तरंग आएंगे कि मुझे ये दिखता है वैसा दिखता है, ऐसा शांति मिलता है ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब तरंगबाजी है, उसमें कुछ दम नहीं है।
परम सत्संग को लेने
ना, परम सत्संग कहना मेरा ध्यान था ही नहीं। संत बिना अंत की बात में अंत पा नहीं सकते, संत मैंने ज्ञानी बिना जन्म मरण के अंत की बात का अंत मैंने निवेदा आने वाला नहीं है। लोक संज्ञा से लोकाग्रह नहीं जा सकते, जो समाज को मुख्य करता है उसको मोक्ष में जाने का अधिकार नहीं होता, उसको तो समाज में जन्म मरण ही करना पड़ेगा, समाज में ही रहना होगा संसारियों के बीच में। और लोक त्याग बिना वैरागी यथायोग पाना दुर्लभ है, मैंने जिसको बहुत लोग इकट्ठा करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग होना चाहिए, हमारी संख्या ज्यादा होना चाहिए, उसको वैराग्य नहीं हो सकता, वो तो लोगों से दूर भगेगा, तो मेरे को तो कम से कम लोगों के साथ रहना है, ज्यादा लोगों के साथ मुझे नहीं रहना है। लोक त्याग जिसको ज्यादा लोग चाहिए, बहुत पहचान चाहिए अधिक से अधिक लोगों की, उसको वैराग्य ही नहीं है, उदासीनता ही नहीं आएगी, अपेक्षावृत्ति 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 से ही ये होता है। अधिक लोगों से संबंध रखना ये अभिप्राय ही अपेक्षा का अभिप्राय में से ही होता है, तो वहां उदासीनता या उपेक्षा होती नहीं है। ऐसे कुछ बातें सिद्धांतिक लिखी है, अब वो अपने आप को पूछते हैं कि ये कोई खोटा है क्या, ये सब खोटा है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि परिभ्रमण हुआ सो हुआ, अब उसके नहीं होने का प्रतिज्ञा लेवे तो पक्षकाण प्रत्याख्यान लेवे तो उत्तर देते हैं कि ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा परिभ्रमण की चिंता आकर के निर्धार होना ये भी आश्चर्यकारक है, सबको नहीं आता, वो भी बहुत प्रयास करने के बाद को कुछ एक को आता है, बाकी सबको नहीं आता है। इसलिए अगर ये भी हो तो आश्चर्यकारक है, ये पहली सीढ़ी पे पर रखता है तो आश्चर्यकारक, ऐसी बात है। हाँ, तो वो भी आश्चर्यकारक है। बस अभी तो उतना ही, फिर कभी मिलेंगे तो मिलेंगे, यही विज्ञापन ऐसा करके कृपालुदेव ने ये पत्र यहाँ समाप्त किया है, यहाँ तक रखे। तो आज खाली स्वाध्याय राखो से चर्चा भी नहीं रखे।
Thank you.